गांव में गोलियों की आवाज़ से दहशत फैल गई थी, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि ये गोलियों की बारिश कहाँ से हो रही है। सभी गांव वालों ने सड़क की तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं। वहां 4-5 स्कॉर्पियो गाड़ियां लाइन से आ रही थीं, जिनमें से बंदूकों की नलियां बाहर निकली हुई थीं और आसमान में फायरिंग हो रही थी। देखते ही देखते वो सारी स्कॉर्पियो शंभू के घर के बाहर रुकीं और उनमें से काले कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने घर और आस्तिक को घेर लिया और सबने ठेकेदार की तरफ बंदूकें तान दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, यहाँ तक कि अरुणिमा भी हैरान हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो इन लोगों को नहीं पहचानती थी। इन सब की यूनिफॉर्म पर आस्तिक का डेविल बैच लगा हुआ था। इसका मतलब था कि ये आस्तिक के सिक्योरिटी कमांडो थे जो उसकी हिफाजत के लिए यहाँ आए थे। शायद उन्होंने ठेकेदार को आस्तिक की तरफ बंदूक तानते हुए देख लिया था, तभी उन्होंने आस्तिक की सुरक्षा के लिए फायरिंग की थी। सिक्योरिटी टीम ने आस्तिक को घेर लिया और सारी बंदूकें ठेकेदार की तरफ थीं। ठेकेदार अपने सामने असली राइफल देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। वैसे गड़बड़ तो कुछ और भी हो गई थी, और वो थी उसकी पैंट, क्योंकि इस वक्त जो वो देख रहा था वो कोई सपना नहीं था और ये राइफलें भी कोई नकली नहीं थीं, बल्कि असली थीं। इतना तो ठेकेदार समझ ही गया था। वो घबरा गया और उसके आदमी जल्दी से वहां से निकलने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही ठेकेदार ने देखा कि उसके आदमी वहां से निकलने वाले हैं, वो जल्दी से बोला, तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, ये गलत है। इन लोगों ने मेरा पैसा लिया है और अब ये वापस नहीं कर रहे हैं, तो तुम मुझे ऐसे जान से नहीं मार सकते। मैं तो अपना पैसा मांग रहा हूँ, अपना पैसा मांगना गलत है क्या? आस्तिक उसकी हकलाहट सुनकर ही समझ गया था कि ठेकेदार डर गया है। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, अपना पैसा मांगना गलत नहीं है, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। शंभू ने कहा ना, वो तुमसे असल से ज्यादा ब्याज दे चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ हर दूसरे दिन आ जाते हो इन लोगों को परेशान करने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो ये गरीब लोग हैं, तुम्हारे सामने आवाज नहीं उठा पाएंगे। पर शायद तुम एक बात भूल गए हो कि हर शहर को एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। ठेकेदार डरते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं चाहिए पैसा, माफ किया मैंने अपना पैसा, बस अब मुझे जाने दो यहाँ से। इतना कहकर वो वहां से भागने ही वाला था कि आस्तिक ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसका गिरेबान पकड़कर उसे हवा में लटकाते हुए अपने सामने किया और गुस्से में घूरते हुए कहा, और आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुमने इस परिवार को या फिर इस गांव में किसी भी परिवार को परेशान किया है, तो याद रखना, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तुम्हारी गर्दन दबोचने में मुझे जरा भी समय नहीं लगेगा। और आस्तिक रायचंद की पावर इतनी है कि तुम्हारे आदमियों के हाथों ही तुम्हारी मौत करवा सकता हूँ मैं, क्योंकि पैसा बोलता है। इसके बाद उसने ठेकेदार को छोड़ दिया। ठेकेदार जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन राइफलें अभी भी उसकी तरफ थीं। वो डरते हुए वहां से अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के सहारे चलता चलता सीधे गाड़ी की तरफ बढ़ा और चलती गाड़ी में उछलकर बैठते हुए बोला, नहीं आऊंगा यहां वापस, साला जान है तो जहान है। ठेकेदार अपने आदमियों के साथ चला गया था और उसके बाद आस्तिक ने अपने आदमियों को हाथ के इशारे से राइफल नीचे करने के लिए कहा। सारे हथियारों की नली अपने आप नीचे हो गई और सब लोगों ने अपना सिर झुका लिया था। आस्तिक गांव वालों की तरफ देख रहा था, जो हैरान नजरों से उसे ही देख रहे थे। फिर उसने शंभू और दादी को देखा, जिनके इस समय तो होश ही उड़े हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि आस्तिक कौन है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा उन्हें अभी-अभी हुआ था। दादी जल्दी से आस्तिक के पास आईं और हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। लेकिन इससे पहले कि दादी अपने हाथ जोड़ पाती, आस्तिक ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दादी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक रात आपके घर में मेहमान बनकर रुका हूँ, इतनी खातिरदारी की है आपने, आपके लिए इतना तो कर ही सकता था मैं। आप फिक्र मत कीजिए, अब वो ठेकेदार आपको परेशान नहीं करेगा। तभी शंभू भी आस्तिक के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद भैया, आपने हमें उस ठेकेदार से निजात दिला दी, वरना वो तो हमारा जीना हराम कर देता। और भैया, हमें माफ कर दीजिए अगर भूल चूक में हमारे मुंह से आपके लिए कुछ गलत निकल गया हो तो। आस्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ शंभू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ मिलकर, पर अब मुझे जाना होगा, मेरे आदमी मुझे लेने आ गए हैं। इसके बाद आस्तिक अपने सिक्योरिटी हेड की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस गांव में हूँ? सिक्योरिटी हेड ने जल्दी से कहा, नीरज सर से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आपका लोकेशन ट्रेस किया। आपका आखिरी लोकेशन जंगल के पास के इलाके में था, फिर आपका फोन बंद हो गया और लोकेशन नहीं मिल रहा था। हमने आसपास तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि पास में ही एक गाँव है। हमें लगा कि आप यहाँ हो सकते हैं, इसलिए हम अपनी टीम को लेकर आपको ढूंढने आए, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि वो आदमी आपके ऊपर बंदूक ताने खड़ा था, इसलिए हमने एक्शन लिया। आस्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, वेल डन, अच्छा काम किया तुम लोगों ने। इसके बाद उसने शंभू और दादी की तरफ देखा और कहा, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगर कभी भी आपको मदद की जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। आस्तिक ने अपने सिक्योरिटी टीम की तरफ इशारा किया तो उन्होंने जल्दी से उसका गोल्ड बिजनेस कार्ड निकाल कर दिया। आस्तिक ने वो कार्ड शंभू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा नंबर है। शंभू ने अपने कांपते हाथों से वो गोल्ड बिजनेस कार्ड लिया और सिर हिलाते हुए उसे इस तरह पकड़ लिया जैसे वो कोई अनमोल हीरा हो।
आस्तिक ने एक नज़र अरुणिमा की तरफ डाली जो इशारों में कह रही थी कि अब घर वापस जाने का समय आ गया है। अरुणिमा ने सिर हिलाया और फिर पास खड़ी औरतों को देखते हुए बोली, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। गाँव की औरतों ने अरुणिमा को गले लगाकर विदा किया। इस वक्त ऐसा भावुक माहौल था जैसे सच में अरुणिमा की विदाई हो रही हो। सबकी आंखों में आंसू थे और अरुणिमा भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। दादी अरुणिमा के पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बिटिया, मेहमान तो तुम एक रात के लिए बनकर आई थी, लेकिन हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। जीवन में अगर कभी मौका मिले तो आना जरूर। मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की इच्छा है। अरुणिमा के आंसू बह रहे थे। उसने दादी को गले लगाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको तो बहुत लंबा जीना है और मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। अरुणिमा धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और आस्तिक अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कुछ बात करता हुआ गाड़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी आस्तिक ने एक धुन सुनी तो वो अचानक चौंक कर पीछे मुड़ा। गांव की सारी औरतें घूंघट के अंदर से विदाई के गीत गा रही थी और अरुणिमा को धीरे धीरे लेकर आ रही थी। आस्तिक ने एक बार सिर हिलाया और फिर सिक्योरिटी हेड से कुछ कहने लगा। अरुणिमा के आंसू रुक नहीं रही थी और गांव की औरतें विदाई गीत गा रही थी। ये गाना तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भावनाओं को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। अरुणिमा को एहसास हो रहा था कि गांव वाले उसके जाने पर भावुक हो रहे हैं। जैसे ही आस्तिक और अरुणिमा गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल जाता है। सिक्योरिटी हेड आस्तिक के पास आता है और उसके हाथों में एक लिफाफा देता है। आस्तिक लिफाफा लेता है और सीधे शंभू की तरफ देखते हुए उसके हाथों में रखकर कहता है, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा।
शंभू एकदम से हैरान हो जाता है। उसने जैसे ही लिफाफा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अंदर नोटों के बंडल थे। शंभू जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं भैया, ये क्या कर रहे हैं, मेहमानों से पैसे नहीं लेते, ये तो अपमान होता है। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है और भगवान से पैसा लेंगे तो हमें पाप लगेगा। अरुणिमा ने रोते हुए शंभू को देखा और बोली, नहीं शंभू, ये कोई एहसान नहीं है बल्कि तोहफा है, रख लो, और अगर तुम इसे लेने से मना करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। शंभू चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उसे पैसे रखने ही पड़े। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भौजी, अगर आप कह रही हैं तो मैं ये पैसे रख लेता हूँ, लेकिन इसे अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, मैं इन्हें गाँव के किसी काम में लगाऊंगा ताकि आपको सब लोग याद रखें। आस्तिक ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए हंसकर कहा, अगर करना ही है तो एक ढंग का बाथरूम बनवा लेना। ये सुनकर सबकी हंसी छूट गई। इसके बाद गांव की औरतें और दादी अपने साथ बहुत सारी थैलियां लेकर आ गईं। आस्तिक एकदम से हैरान रह गया और अरुणिमा की आंखें भी बड़ी हो गईं। गांव की औरतों ने वो सारे पैकेट अरुणिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिटिया, हम तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। हमारे यहाँ से कोई भी मेहमान खाली हाथ नहीं जाता और तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, हम बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते। अरुणिमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और आस्तिक की तरफ देखा। आस्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी है, रखना है तो रख लो। अरुणिमा ने सिर हिलाया और सिक्योरिटी टीम ने एक एक करके सारे गिफ्ट गाड़ी में रख दिए। इतने सारे पैकेट थे कि आस्तिक की दो गाड़ियों की डिग्गी पूरी तरह भर गई थी। गांव वालों ने अपने अपने हिसाब से अरुणिमा को विदा किया। किसी ने अचार दिया तो किसी ने सूखे पापड़, किसी ने मीठी मठरी दी तो किसी ने तेल मसाले। आखिर गांव से इससे बेहतर तोहफा और क्या मिल सकता था। अरुणिमा गाड़ी में बैठ जाती है और नम आंखों से सबको देखकर हाथ हिलाती है। गांव वाले भी रोती हुई निगाहों से अरुणिमा और आस्तिक की विदाई करते हैं। आस्तिक एक नज़र अरुणिमा को देखता है और फिर चेहरा घुमाते हुए मुस्कुराकर कहता है, इतना तो तुम अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी।